भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के 20वें अध्याय पर चर्चा है, इसके पांचवें श्लोक को दोहराएंगे। प्रत्नस्य विष्णु रूपं यत् सत्यर्सत्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यं आत्मन्नमैहति प्रज्ञस्य विष्णुरूपं यत् सत्यर्तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यं आत्मनमहिति प्रज्ञस्य विष्णुरूपं यत् सत्यस्य रित्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मनमीहति सत्यस्य परम सत्य का ऋतस्य धर्म का ब्रह्मणः परब्रह्म का अमृतस्य शुभ फल का च तथा मृत्योः मृत्यु या अशुभ फल का च तथा सूर्यं सूर्यदेवता आत्मानं सभी आत्माओं के मूल परमात्मा की इमही शरण की याचना करते हैं। इति इस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस मंत्र के द्वारा प्लक्षद्वीप के वासी परब्रह्म की उपासना करते हैं। हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें जो परम प्रकाशित पुराण पुरुष श्री भगवान के प्रतिबिंब हैं। विष्णु ही एकमात्र आराध्य हैं, वही वेद हैं, वही धर्म हैं और वही शुभ अशुभ फलों के स्रोत हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु मृत्यु के भी परमेश्वर हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। शुभ तथा अशुभ इन दोनों प्रकार के कार्यों के नियंता भगवान विष्णु हैं। ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य विष्णु के सम्मुख होते हैं और अशुभ कार्य उनकी पीठ के पीछे। शुभ तथा अशुभ कार्य सारे विश्व में एक साथ पाए जाते हैं और भगवान विष्णु इन दोनों के नियंता हैं। इस श्लोक के संबंध में श्रील मध्वाचार्य का कथन है, सूर्य सोम अग्निवारी शवि धातुषु यथाक्रमं प्लक्षाद्वीप संस्थासु स्थितं हरिम उपासते। संपूर्ण सृष्टि में अनेक भूभाग खेत पहाड़ तथा सागर पाए जाते हैं और सर्वत्र ही श्री भगवान विभिन्न नामों से पूजे जाते हैं। श्रील वीर राघव आचार्य ने श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है, विराट जगत के मूल कारण अवश्य ही पुरातन पुरुष हैं और वे भौतिक रूपांतर से परे होने चाहिए। वे ही समस्त शुभ कार्यों के भोक्ता हैं और इस बद्ध जीवन तथा मुक्ति के कारण भी वे ही हैं। सूर्य देव की गणना परम शक्तिशाली जीव अथवा जीवात्मा के रूप में की गई है, जो उनके शरीर के एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम स्वभावतः शक्तिशाली जीवों के वश में हैं, अतः हमें विभिन्न देवताओं की उपासना ऐसे जीवों के रूप में कर सकते हैं जो श्री भगवान के शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं। यद्यपि इस मंत्र में सूर्य देवता की उपासना के लिए कहा गया है, किंतु उनकी उपासना श्री भगवान के रूप में नहीं वरन उनके शक्तिशाली प्रतिनिधि रूप में की जाती है। कठोपनिषद में कहा गया है, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराधे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चत्रिण चिकेता। हे नचिकेता, सूक्ष्म जीवात्मा तथा परमात्मा के रूप में विष्णु के दोनों अंश इस शरीर की हृदय गुफा में स्थित हैं। इस गुहा में प्रवेश करके जीवात्मा प्राणवायु पर आधारित रहकर कर्मों के फल का भोग करता है और परमात्मा साक्षी बनकर उसे भोग करने देता है। ब्रह्म ज्ञानियों तथा वैदिक नियमों का पालन करने वाले गृहस्थों का कहना है कि दोनों में वैसा ही अंतर है जैसा कि सूर्य तथा उसकी छाया में। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, सविश्वकृत विश्वादात्म योनि ही यह काला करो गुणे सर्वविद यह प्रधान क्षेत्र ज्ञतिप गुणेश संसार मोक्ष स्थित बंधन हेतु। इस संग जगत का सृष्टिकर्ता परमात्मा अपनी सृष्टि का कोना कोना पहचानता है। यद्यपि वह इसका कारण है, किंतु उसके प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सर्वज्ञाता है, परमात्मा समस्त दिव्य गुणों के स्वामी तथा इस जगत के बंधन और मोक्ष के भी स्वामी हैं। इसी प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में भी कहा गया है, भीषास्मद्वात पवते भीषोदित सूर्यः भीषास्मदा अग्निश्चंद्रेश्च मृत्युर्धावति पंचमः। परब्रह्म के भय से वायु बहती है, सूर्य उदय अस्त होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी के भय से मृत्यु तथा स्वर्ग के राजा इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं। जैसा कि इस अध्याय में वर्णित है, प्लक्षद्वीप इत्यादि पांच द्वीपों के वासी क्रमशः सूर्य चंद्र अग्नि वायु तथा ब्रह्मा की उपासना इत्यादि करते हैं। यद्यपि वे इन पांचों देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु वास्तव में वे समस्त जीवों के परमात्मा श्री भगवान विष्णु को ही उपासते हैं, जैसा कि श्लोक के इन शब्दों से प्रकट है। प्रत्यस्य विष्णु रूपम, विष्णु ब्रह्म हैं, अमृत हैं, मृत्यु हैं, वे परब्रह्म हैं और शुभ तथा अशुभ सभी वस्तुओं के मूल हैं। वे सबों के हृदय में स्थित हैं, जिनमें देवता भी सम्मिलित हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कामस्तस्तहित ज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवता, कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है वे ही अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। जो महत्वाकांक्षाओं के कारण अंधे होते हैं उन्हें अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना की सलाह दी जाती है, किंतु देवता उनकी मनोकामनाओं को वास्तव में पूरा नहीं कर पाते। सभी देवता उतना ही कर पाते हैं जितने कि भगवान विष्णु उन्हें आज्ञा देते हैं। जो अत्यधिक लालची होते हैं वे विष्णु को न पूजकर अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान विष्णु की ही उपासना करते हैं, क्योंकि वे ही समस्त देवताओं के परम आत्मा हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थना को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्राधि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिभान्तो दिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हमनमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारत्कंठयोस्वरा।
हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में जाम्बुद्वीप का वर्णन हम लोग सुन रहे थे कि कैसे जांबुद्वीप में प्रार्थनाएं अर्पण हुई, भारतवर्ष के महत्व को कहा गया कि कैसे भारतवर्ष में जन्म लेना देवता प्रार्थना करते हैं, कि भारतवर्ष में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण है और कितना दुर्लभ है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवताओं से भी ज़्यादा पुण्य करना पड़ता है, तब किसी को भारतवर्ष में जन्म मिलता है। तो अब 7 द्वीप हैं इस अध्याय से, अब अंतिम प्राय अंतिम अध्यायों तक इस ब्रह्मांड की रचना का वर्णन है, कैसे ब्रह्मांड की रचना है, कैसे ये बना हुआ है। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन सब को, ये जो रचनाओं का वर्णन है कि कितना फैला हुआ है, कितना योजन है, फिर उसके पास में क्या है, उसके आगे क्या है, इन सब को महान विद्वानों ने, महान विचारकों ने, महान ऋषि मुनियों ने इन सब को कहा है, इसीलिए इसको सत्य मानना चाहिए, इसको कोई कल्पना नहीं मानना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि कभी कभी जब हम ये वर्णन पढ़ते हैं, जैसे आज के समय में जो हम लोग वर्णन पढ़ेंगे आज के अध्याय में, तो उसमें कई सागरों का वर्णन है, अलग अलग प्रकार के सागर। और हमारी दृष्टि में, हमारे अनुभव में हमने केवल एक ही सागर देखा है और वो है खारे पानी का सागर। तो इसलिए जब वर्णन आता है कि कैसे ऐसे कई सागर हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे एक सागर घी का सागर है, एक सागर केवल दही का सागर है, एक सागर जिसमें गन्ने का रस भरा हुआ है, एक सागर जिसमें शराब भरी हुई है, एक सागर जिसमें शुद्ध मीठा जल भरा हुआ है, तो ऐसा सब वर्णन सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता है ना। घी कितना महंगा है आजकल, और कोई कहे कि घी का सागर है तो कैसे विश्वास करेंगे। हाँ, अगर कोई अच्छा व्यापारी होगा तो वो विश्वास कर लेगा कि ठीक है, मुझे बताइए कहाँ है, वहाँ से एक पाइपलाइन लगाता हूँ फ्री में और यहाँ पर 500 रुपये किलो इसको बेचता हूँ। लेकिन इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी दृष्टि के, हमारी इंद्रियों के परे है। जैसे भगवान को अधोक्षज कहा जाता है, अधोक्षज मतलब वो जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, तो जो इंद्रियों के परे हैं उनको इंद्रियों से कैसे समझा जा सकता। जिसको हम देख नहीं सकते उसको देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा चलने में हम तो केवल पंखे को देख रहे हैं, लेकिन पंखे के चलाने के पीछे जो बिजली है, विद्युत है, उसको देखते नहीं हैं। लेकिन केवल पंखा चल रहा है इससे ये अनुभव हो जाता है, इससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि विद्युत है, बिजली है, तभी तो पंखा चल रहा है। जब बीज को देखते हैं हम तो उसमें पेड़ दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन हमें पता होता है कि हम बीज लगाते हैं, बीज इतना सा होता है, पेड़ कितना विशाल होता है। तो हमें पेड़ नहीं दिखता, लेकिन बीज को लगाने से हमें पता है कि पेड़ आ जाएगा। पंखे को देखकर हमें पता है कि बिजली है। इसी तरह इस जगत की चीज़ों को देखकर ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जाता है जो हमें इंद्रियों से देख नहीं सकते, जो हमारी इंद्रियों के परे हैं। जो चीज़ देखी नहीं है उसको देखे, दृश्य चीज़ों से अदृश्य चीज़ों को देखने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप सूर्य देख सकते हैं, आप चंद्रमा देख सकते हैं, आप जल को देख सकते हैं, लेकिन जल को बनाने वाले को आप देख नहीं सकते, सूर्य को शक्ति प्रदान करने वाले को आप देख नहीं सकते। देख सकते हैं लेकिन इन इंद्रियों से नहीं देख सकते। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उनको देख ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान को देख ही नहीं सकते, इसीलिए भगवान का रूप ही नहीं है, क्योंकि अगर रूप होता तो सामने दिखाई देते। दिखते नहीं है इसीलिए रूप नहीं है। जैसे हवा, हवा दिखती नहीं है, अनुभव होती है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। तो इसीलिए लोग मान लेते हैं, क्योंकि भगवान को देखा नहीं जा सकता, उनको किसी आकार में हम नहीं ला सकते। वो अनंत हैं, असीमित हैं, निर्गुण हैं, परम ब्रह्म हैं, इसीलिए वो निराकार हैं। ये गलत धारणा है। भगवान को इन इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन भगवान को देखने की प्रक्रिया है, भगवान को आध्यात्मिक इंद्रियों से देखा जाता है। और इसी तरह ये सारे वर्णन ब्रह्मांड के, इसको भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऋषि मुनियों ने कल्पना मात्र कर दी है कि शायद एक ऐसा होगा, जो आजकल के वैज्ञानिक करते हैं। डार्विन, जिन्होंने मनुष्य कैसे आया इस पर बहुत बड़ी किताब लिख दी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, लेकिन उसमें क्या कहा है? शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, क्योंकि देखा नहीं डार्विन ने। लेकिन ये जो वर्णन है, ये ऋषि मुनि देख कर वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने लोक में बैठकर देखते हैं और वर्णन करते हैं, बिना देखे वर्णन नहीं है। इसीलिए किसी भी शास्त्र में शायद कल्पना नहीं की गई है कि शायद हो सकता है कि एक ऐसा सागर हो जिसमें केवल दूध हो, नहीं, कल्पना नहीं है। वहां तो कहा गया है क्षीर सागर है, और कहां है उसका सारा वर्णन दिया गया है। ब्रह्मांड में है, पृथ्वी से इतने योजन दूर है, ये सारा वर्णन दिया गया है। तो इस वर्णन को पढ़कर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये जो वर्णन है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा प्रकट किया गया है, इसीलिए सत्य है। तो पिछले अध्याय में हमने जांबू द्वीप का वर्णन सुना था। अब इस अध्याय में और 6 द्वीप, जो जांबू द्वीप के साथ मिलकर सप्तद्वीप, 7 द्वीप बनाते हैं, उन 6 द्वीपों का वर्णन है। तो जांबू द्वीप, जिसमें हमने भारतवर्ष का वर्णन सुना, उसके चारों ओर जितना बड़ा ये द्वीप है, उतना ही उसके चारों ओर एक समुद्र है, जो खारे पानी का समुद्र है, नमकीन पानी का समुद्र है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये भारतवर्ष के चारों ओर है। ये जो 7 वर्ष हैं, ये आप मान लीजिए कि जैसे एक छोटा गोला, फिर उसके बाहर एक और गोला, फिर उसके बाहर एक और, ऐसे 7 गोले हैं। अर्थात एक छोटा है जांबू द्वीप सबसे बीच में, उससे दुगना आकार का है दूसरा द्वीप, उससे दुगना आकार का है तीसरा, उससे दुगना आकार चौथा, और उतने ही बड़े समुद्र हैं। हर एक द्वीप के बाहर एक एक समुद्र है। तो एक द्वीप है, उसके बाहर एक समुद्र, फिर उसके बाहर एक द्वीप, फिर उसके बाहर एक समुद्र, ऐसे करके 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं। तो जांबू द्वीप के पास में, जांबू द्वीप के निकट नमकीन सागर है, और उसके बाद प्लाक्ष द्वीप आता है। प्लाक्ष द्वीप जांबू द्वीप से दुगना है, जहां हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्लाक्ष द्वीप के आसपास गन्ने के रस का सागर है। पता नहीं कितनी बड़ी मशीन लगी होगी, नहीं वो गन्ने को ऐसे करते रहना कोई जरूरत नहीं है। भगवान जब रस को गन्ने में डाल सकते हैं, तो बिना गन्ने के रस भी प्रकट कर सकते हैं ना। तो उनको कोई मशीन की जरूरत नहीं है कि मशीन लगा कर पहले गन्ना उगाएंगे फिर वो सागर बनाएंगे। तो समुद्र है पूरा। अब आप लोग जैसे जैसे ये एक एक समुद्र सुनते जाएं, आप लोग कल्पना कीजिए कि अगर हम वहां होंगे तो क्या करेंगे, वहां के लोग क्या करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, है ना। अचानक आपको मिल जाए, हमें ध्यान है, हम लोग एक समय बुक वितरण करने के लिए 5-6-7 ब्रह्मचारी गाड़ी में जा रहे थे, अचानक एक जगह कोई महाराष्ट्र के पास से पहुंचे तो वहां पर पता चला कि गन्ने का रस निकाल कर वहां से गुड़ बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा था। तो हम लोग को जैसे ही पता लगा हम लोग तो रुक गए कि बहुत अच्छा है, और जाकर उन लोगों से कहा तो उन्होंने कहा जितना चाहिए ले लो, क्योंकि बहुत था, बहुत बड़ी कढ़ाई थी, उसमें वो लोग भर भर के डाल रहे थे गन्ने का रस, फिर उसको गर्म करके गुड़ बना रहे थे, तो रस जो भरा हुआ था। तो हम लोगों को तो एकदम, जब मंदिर में होते हैं कभी गलती से मिल जाता है तो एक गिलास मिलता है, दूसरा मांगो तो कमांडर कहते नहीं मिलेगा, इतना ही है, है ना। और वहाँ हमें पता चला कि वो लोग कह रहे हैं जितना, क्योंकि वो वर्कर थे, मालिक तो था नहीं, उनका क्या जाता है। तो वर्कर ने कहा जितना चाहिए ले लो। तो हम लोग भी पूरे एक एक सब अपनी अपनी बॉटल ले आए, वो जग ले आए, वहाँ पर भी पिया, बॉटल में भी भर लिया सब हमने, क्योंकि ले भी जाएंगे रास्ते में पियेंगे, स्वाभाविक है ना। अब ये क्या था, एक छोटा सा एक भरा हुआ पात्र, उसमें अगर समुद्र होगा तो क्या होगा, समुद्र अथाह, कोई उसकी सीमा नहीं है, जितना चाहिए पी लीजिए। तो इस प्लाक्ष द्वीप के आसपास ये एक सागर है। वैसे इनका वर्णन करते हुए इस अध्याय में दो महत्वपूर्ण बातों को प्रभुपाद प्रकट करेंगे। पहले हम लोग ये वर्णन सुन लें और फिर उन पर चर्चा करेंगे। तो प्लाक्ष द्वीप के बाद शालमली द्वीप आता है। तो ये 7 द्वीप हैं, जाम्बू द्वीप हो गया, प्लाक्ष द्वीप, फिर शालमली। अब जो शालमली द्वीप है इसके चारों ओर भी एक समुद्र है। तो एक हो गया जो पहला कौन सा था सागर, नमकीन पानी का, जो हम लोग देख सकते हैं। दूसरा सागर गन्ने का रस। अब तीसरा सागर है, इसमें क्या भरा हुआ है, शराब। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में सबके लिए व्यवस्था की गई है, जो पाप करना चाहता है उसके लिए भी व्यवस्था की है भगवान। तो शराब का सागर भरा हुआ है। तो देखिए, कोई जरूरत नहीं बॉटल खरीदने की, पैसा खर्चा करने की, जितना पीना है पियो, फिर वहीं पर पड़े जाओ, सुबह उठो फिर पीना शुरू कर दो, फिर गिर जाओ फिर पियो। लोग यही करते हैं ना, जीवन क्या है लोगों का, हम लोग तो सोचते हैं वहां जाके करेंगे, लोग यहीं पर ऐसा करते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को पीते हैं, सो जाते हैं, फिर काम भी क्यों करते हैं, पीने के लिए, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। अगर समझिए किसी काम करने वाले को कह दिया जाए कि तुम काम मत करो, लो रोज मेरे से शराब का पैसा ले लो, वो तो खुश, वो क्यों काम करेगा। पाश्चात्य जगत में जब लोग भीख मांगते हैं तो वो बोर्ड लगा के रखते हैं, प्लीज गिव मी $1 फॉर बियर, मुझे शराब खरीदने के लिए पैसा चाहिए इसलिए भीख दीजिए। तो लोग काम करते हैं फिर, तो अगर काम नहीं करना तो समुद्र हो सामने तो क्या करेंगे, उठेंगे पिएंगे फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे फिर गिरेंगे। भौतिक जगत ऐसा ही है। इस जगत में व्यक्ति आनंद की खोज करता है, थोड़ा आनंद मिलता है फिर गिर जाता है, फिर आनंद मिलता है फिर गिर जाता है, तो वो सच्चा आनंद नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति शराब पी रहा है, थोड़ा सा उसका नशा उतरा, फिर उसने शराब पी, फिर नशा उतरा, क्या उसको सुखी कहा जाएगा। हमारा सुख इसी प्रकार का है, दुख में हम बड़े रहते हैं, दुख से संघर्ष करते हैं बाहर आने का। व्यक्ति दिन भर संघर्ष करता है धन कमाने के लिए, और फिर क्या करता है, उसको उड़ा देता है शराब में। इसी तरह हम दुख से बाहर आने के लिए संघर्ष करते हैं, और दूसरा दुख आने तक, अर्थात जो व्यक्ति शाम तक जिसने काम किया, अब कल सुबह काम करने तक का जो बीच का समय है उसको वो सुख मानता है। इसी तरह एक दुख गया, दूसरा दुख आने वाला है, बीच के समय को हम सुख मानते हैं, क्या कहकर? अच्छा है, दुख नहीं है। तो दुख का अभाव को सुख माना जाता है इस जगत में। सच्चा सुख है ही नहीं इस जगत में, तो जब तक दुख नहीं है वही लोगों के लिए सुख है कि कम से कम दुख तो नहीं है, उसी को सुख कहते हैं। लेकिन सच्चे सुख की परिभाषा शास्त्रों में विस्तार से दी गई है। तो ये तीसरा समुद्र हो गया जहां पर शराब है। फिर चौथा द्वीप है जिसे कुश द्वीप कहते हैं, और कुश द्वीप में, कुश द्वीप के चारों ओर, वैसे जो इन सब द्वीपों के रहने वाले हैं ये सब अलग अलग देवताओं की प्रार्थना करते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों देवताओं की प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये लोग अलग अलग देवताओं की प्रार्थना करते हैं। जैसे प्लाक्ष द्वीप के लोग सूर्य की प्रार्थना कर रहे हैं, हमने इस श्लोक में देखा। फिर शालमली द्वीप के लोग चंद्रमा की प्रार्थना करते हैं, और अब कुश द्वीप में लोग अग्नि की प्रार्थना करते हैं। और कुश द्वीप के चारों ओर एक समुद्र है जिसमें घी भरा हुआ है, घी का समुद्र है। देखिए हम लोग को किचन चलाने में कितना कष्ट होता है ना, आजकल घी में खा नहीं सकते, ऑयल में खाना पड़ता है, लेकिन वहाँ घी का समुद्र है पूरा। जितने डब्बे भरने भर लो कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग भरते नहीं है डब्बे है। जब लोगों के पास भरा पड़ा कितना समुद्र हो, थोड़ी डब्बे भरेंगे वो लोग, तो कम होता है तब भरते हैं। तो कितने सागर हो गए? नमकीन पानी का सागर, गन्ने का रस का सागर, शराब का सागर, घी का सागर। फिर उसके बाद क्रौंच द्वीप आता है। क्रौंच द्वीप के चारों ओर दूध का सागर है, क्षीर सागर, पूरा दूध से भरा हुआ। बताइए कितनी गायें लगी होंगी वो दूध देने के लिए, पूरे सागर को भरने के लिए। लेकिन वही बात, जो भगवान गायों के थनों में दूध दे सकते हैं, भर सकते हैं, हम लोग तो केवल उन थन से दूध निकालते हैं, बस हमारी क्षमता उतनी है। हम गायों के थनों में दूध नहीं डाल सकते, वो तो भगवान करते हैं। देखिए ये जानना चाहिए, ये कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, ये भगवान की कृपा है। भगवान ही केवल गाय के थनों में दूध भरते हैं, फिर उस दूध को हम लोग पी सकते हैं। तो दूध का सागर, तो जो गायों के थनों में दूध भर सकते हैं वो सागर में क्यों नहीं भर सकते, वहां भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक और द्वीप है। फिर उसके बाद द्वीप आता है शक। शक द्वीप में चारों ओर, शक द्वीप के चारों ओर, शक द्वीप में वायु की पूजा होती है, और शक द्वीप के चारों ओर जो समुद्र है उसमें दही भरी हुई है। तो सब कुछ है, भगवान का अभिषेक करने के लिए कोई चिंता नहीं है ना। समुद्र में दूध है, दही है, घी है, और क्या चाहिए भगवान के अभिषेक करने के लिए। तो कितने सागर हो गए? कोई बताएंगे छह कौन से हैं? नमकीन पानी, बिना देखे बताएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, गन्ने का सागर, हाँ, शराब का सागर, घी का सागर, दूध का सागर और दही का, छह हो गए। एक सातवां बच गया, आखिरी द्वीप। आखिरी द्वीप जहाँ ब्रह्मा जी की प्रार्थना होती है, ब्रह्मा जी को पूजा जाता है, उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। इसीलिए जो ब्रह्मा जी का क्षेत्र इस स्थान में भी है, राजस्थान में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसको पुष्कर क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि पुष्कर द्वीप में ही केवल ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। और वहाँ जो सागर है वो मीठे पानी का सागर है, पीने वाला जल, मीठा पानी, खारा नहीं है, नमकीन नहीं, तो मीठे पानी का जल है, सागर है। तो ऐसे ये सात सागर हैं और सात द्वीप हैं, और ये मिलकर भूमंडल बनता है। अब इसके परे भी अभी पूरा पूरा ब्रह्मांड नहीं हुआ है। तो ये सात द्वीप हो गए। इन सातों द्वीपों में प्रियव्रत महाराज के एक एक पुत्र राज्य करते हैं अभी भी इस समय भी। प्रियव्रत महाराज ने जब अपने सारे राज्य को, आपको स्मरण होगा, उन्होंने रथ के पहियों से 7 द्वीप बना दिए थे और एक एक द्वीप उन्होंने अपने 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 पुत्रों को दे दिया था, एक एक पुत्र को। तो आज भी इन द्वीपों पर उनके एक एक पुत्र एक एक द्वीप पर राज्य करते हैं। तो इस तरह से, और फिर इसके पीछे इन 7 द्वीपों के परे एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसे लोकालोक पर्वत कहते हैं। लोकालोक पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो त्रिभुवन है, त्रिभुवन किसे कहते हैं? तीनों लोकों को। कभी कभी कहा जाता है ना, रावण ने तीनों लोकों को जीत लिया, त्रिभुवन के स्वामी। तो तीन ही लोक क्यों कहे जाते हैं? ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? 14 भुवन है ना, तो फिर तीन ही क्यों कहे जाते हैं? त्रिभुवन, तीन लोक, तीनों लोकों के स्वामी इत्यादि। उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई, कई बार ऐसा लिखा जाता है। तो क्या है ये त्रिभुवन, क्या है त्रिलोक? भू, भुव और स्वर, इन तीनों को प्रमुखता 3 लोक कहा जाता है या त्रिभुवन कहा जाता है। वैसे तो 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, लेकिन इनको त्रिभुवन कहा जाता है। तो ये जो लोकालोक पर्वत है, ये इन 3 भुवनों को कवर करता, आच्छादित करता है। इनके परे नहीं है, सूर्य की रोशनी इस लोक के परे नहीं जाती, इस पर्वत के परे, इतना ऊंचा पर्वत है। तो ये जो तीनों भुवन हैं, इनको ये कवर कर देता है, इतना बड़ा लोकालोक पर्वत। फिर उसके पीछे और एक पर्वत स्थान है, आलोक वर्ष। तो ऐसे ये ब्रह्मांड का वर्णन इस अध्याय में किया है। आगे इसका और विस्तार से वर्णन होगा कि कैसे सूर्य की गति होती है, और इस अध्याय के अंत में सूर्य का गुणगान किया गया है। सूर्य को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, मार्तंड सूर्य का एक नाम है, और भी ऐसे बहुत से नामों से, वैराज, मार्तंड, हिरण्यगर्भ इत्यादि नामों से सूर्य को पुकारा गया, और सूर्य के महत्व का वर्णन इस अध्याय के अंत में किया गया है। तो ऐसे ये पूरा अध्याय बटा हुआ है 7 द्वीपों का वर्णन करते हुए। इन अध्यायों में इन श्लोकों का वर्णन या उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हुए प्रभुपाद 2 महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रकट करते हैं। पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि हर द्वीप में किसी न किसी देवता की पूजा हो रही, कहीं सूर्य की, कहीं अग्नि की, कहीं चंद्र की, कहीं वायु की, ये सारे, कहीं ब्रह्मा जी की, तो देवताओं की पूजा हो रही है। और ये कहा गया है कि वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? और उसको फिर भागवत में क्यों कहा गया, भागवत में क्यों दिया गया? सुखदेव गोस्वामी ने देना नहीं चाहिए था, पूरी जगह बता रहे हैं कि नहीं करना। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि हम लोग, जैसे प्रभुपाद इस अध्याय में, इस तात्पर्य में भी बता रहे थे कि देवी देवताओं की पूजा व्यक्ति कौन करता है? कामस्तस्तहितज्ञाना, जिनका ज्ञान काम के द्वारा हर लिया गया है। तो फिर क्या ये लोग, जितने भी लोग इन द्वीपों में पूजा कर रहे हैं देवताओं की, इनका, इनकी बुद्धि हर ली गई है? क्यों सीधे भगवान की पूजा नहीं कर रहे? पहली चीज, वे लोग जानते हैं देवताओं की स्थिति, देवताओं की स्थिति को जानते हुए देवताओं की पूजा करने में कोई गलती नहीं है। देवता कौन है ये जानते हुए कि देवता भगवान के अधीन है, देवता भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं, देवताओं की रचना भगवान ने की है, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैंने ही रचना की है, ये जानते हुए कि भगवान परम है, अगर कोई भगवान देवताओं की पूजा करता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। एक तरफ कहा जाता है देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए, तो ये जान लीजिए हम लोग देवताओं के विरोधी नहीं हैं, हमें देवताओं से कोई विरोध नहीं है, हमें तो विरोध है उन उस प्रक्रिया से जिसमें उनको भगवान मानकर उनकी भक्ति की जाती है, वो गलत है। देवता गलत नहीं है, क्योंकि देवता तो भगवान के अधीन रहकर सेवा कर रहे हैं, सेवक हैं भगवान के, वो कैसे गलत हो सकते हैं। देवता गलत नहीं है, उनको भगवान मानना गलत है। और देखिए लोगों की मूर्खता, भारत में विशेषता, सबको भगवान माना जाता है। आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छन्ति सागरात सर्वदेवो नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। लोग कहते क्या फर्क पड़ता है, आप किसी की भी पूजा करो, आकाश से जब पानी गिरता है अंत में तो सागर में चला जाता है, किसी भी नदी से जाए क्या फर्क पड़ता है, जाता तो सागर में है ना। इसी तरह किसी की भी पूजा करो, केशवम प्रतिगच्छति, वो तो भगवान की पूजा है, सही है, गलत नहीं है, खुद भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो कैसे लोग उनको भगवान मान लेते हैं, देखिए लोगों की मूर्खता। शिवजी भगवान, दुर्गा भगवान, गणेश भगवान, बताइए, पिता भगवान, माता भगवान, उनका पुत्र भी भगवान, यही तो करते हैं ना लोग, सब भगवान है उनको, कहीं गणेश जी भगवान है, शिव जी भगवान है, दुर्गा जो उनकी माँ है वो भी भगवान है। तो फिर बचे कौन, सारे तो भगवान हो गए हैं इन लोगों के लिए। ये मूर्खता है कि उनको भगवान नहीं मानना। हाँ वो देवता हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ स्तर पर हैं, इसीलिए कभी अपमान भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम देवताओं का अपमान करें, ये गणेश हटाओ उसको साइड में, दुर्गा भगवान की शक्ति है खाली, भगवान की शक्ति है, आपकी शक्ति नहीं है, इसीलिए उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए देवताओं की पूजा करने का लाभ क्या है, देवताओं की पूजा करने का लाभ है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है, बस इतना ही लाभ है। ये असली लाभ है देवताओं की पूजा का, कि वो भगवान की भक्ति में स्थित हो जाए। तो इसके लिए अगर कोई, जैसे गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, किस लिए, कृष्ण को पाने के लिए, वो ठीक है। अगर कोई कृष्ण को पाने के लिए, श्रील प्रभुपाद के पास एक बार एक श्रील प्रभुपाद के भक्त थे, बहुत धन इकट्ठा किया करते थे, तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि गणेश जी की पूजा मैं कर लूं, गणेश जी को प्रार्थना करूं कि मुझे बहुत धन दे दे भगवान की सेवा के लिए। बोले हाँ कोई प्रॉब्लम, प्रभुपाद ने कहा भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हो, कोई तकलीफ नहीं। तो और एक भक्त थे, उन्होंने समझ में आया, उनको पता चला कि प्रभुपाद ने इनको गणेश जी की पूजा के लिए कह दिया, वो भी गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद मैं भी गणेश जी की पूजा करूं, प्रभुपाद ने कहा रोज $10,000 ला के दो, बाद में गणेश जी की पूजा करना है। मतलब भगवान की सेवा के लिए ठीक है, हम गणेश जी से कह सकते हैं आप विघ्न हरता हैं, मेरी भक्ति में जितने विघ्न आए उसको निकाल दीजिए, कृष्ण को प्राप्त करने में जितने विघ्न आए उसको निकाल दीजिए, ये पूजा ये प्रार्थना हम भगवान गणेश जी से कर सकते हैं, क्या गलती है। तो इसीलिए देवताओं की स्थिति को समझकर जब हम उसे आदान प्रदान करते हैं उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हर एक को भगवान मान लेना, लोग तो किसको, रामचंद्र जी भगवान, हनुमान जी वो भी भगवान, अब बताइए राम हनुमान जी के सामने जाकर कहिए आप भगवान हैं, इतना थप्पड़ पड़ेगा आपको कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ। लेकिन लोग यही कहते हनुमान भी भगवान, राम भी भगवान, और भी कोई हो वो भी भगवान। भारत में तो बड़े दयालु लोग हैं, हर एक को भगवान कह देते हैं, कोई अचानक जरा सा कुछ चमत्कार दिखा दे वो भगवान हो गए। मतलब भारत में लोग कहते अच्छा तुम अपने आप को भगवान मान, तुम ही भगवान, ठीक है कोई बात नहीं, खुश रहो भगवान। ये मूर्खता है, भगवान एक है। तो यहाँ के जितने भी निवासी अलग अलग द्वीप में जो प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की भी जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये मानकर कर रहे हैं कि आप भगवान नहीं हैं। सूर्य को कह रहे हैं ना, आपको शक्ति कहाँ से आई है, भगवान से। ब्रह्मा जी आपको शक्ति कहाँ से आई है, भगवान से। ज्ञान कहाँ से आया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने दिया। इस बात को मानकर अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो कोई गलती नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम जानते हैं कि भगवान विष्णु हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता क्या है। कोई अगर कहे कि मैं जानता हूं कि भगवान कृष्ण है, ये जानते हुए मैं गणेश जी के पास जाता हूं, तो फिर जाने की क्या जरूरत है? सरल बात है, अगर आप जानते हो तो कृष्ण के पास आओ। कठिन होता है कृष्ण के पास आने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। और इसीलिए यहां दिया गया है कि भले कोई व्यक्ति अगर आसक्त है देवी देवताओं की पूजा से, तो कम से कम ये मानकर करे कि देवी देवता भगवान के केवल प्रतिनिधि हैं, भगवान के अंग हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान पूर्ण हैं। इसको मानकर तो करो, तो धीरे धीरे सब छोड़कर भगवान की भक्ति में आ सकोगे। तो ये देवी देवताओं का वर्णन है। दूसरा महत्वपूर्ण वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में भी कर रहे हैं, शुभ और अशुभ चीजों का। भगवान पूर्ण शुभ हैं। इस जगत में हम लोग बहुत सारी शुभ और अशुभ चीजों को देखते रहते हैं। सारा हमारा कार्य शुभ और अशुभ पे ही होता है ना। दुकान खोलनी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है? शादी करनी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है? लोग देते हैं 12:21 पर। क्या होगा 12:22 पे? 12:22 पे क्या हो जाएगा? और 12:21 पर शादी करने के बाद भी क्या गारंटी है दोनों सुखी रहेंगे? राइट? लेकिन वो शुभ मुहूर्त है। आप में से भी कई लोगों ने शुभ मुहूर्त में किया होगा और कोई सुखी नहीं है, है ना? So, शुभ मुहूर्त देखते हैं लोग हर चीज का। शादी का शुभ मुहूर्त, विवाह या दुकान खोलने का शुभ मुहूर्त, जीवन में शुभ और अशुभ को बहुत देखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस जगत में कोई चीज शुभ है ही नहीं। क्या शुभ है इस जगत में? केवल भगवान शुभ है, बाकी सब अशुभ है। क्यों? अगर व्यक्ति शुभ चीज किस लिए देख रहा है, जैसे कभी कभी लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, महाराज हम लोग भी कहीं जाते हैं कभी रास्ते में, तो लोग हमको पूछते हैं आप हाथ देखते हैं क्या? हम तो कहते हैं हाँ देखते हैं, दिखाओ हाथ। देखेंगे बोले बहुत बुरा समय है तुम्हारा, भगवान की भक्ति करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। सत्य है ना, और क्या कहना। तो लोग ज्योतिषी के पास जाते, ज्योतिषी क्या कहता है, अगले 3 महीने तुम्हारा अशुभ समय है, 3 महीने के बाद शुभ समय होगा। क्या शुभ समय होगा 3 महीने के बाद? 3 महीने के बाद तुम्हें भोग करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, वही तो शुभ समय होगा ना। 3 महीने के बाद तुम आनंद ले सकोगे, वो तो और अशुभ है। अगर आप इंद्रिय भोग नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, वो तो कम से कम ठीक है, लेकिन जब इंद्रिय भोग की सुविधा मिल गई वो तो और अशुभ है। इसलिए ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद ने कभी एनकरेज नहीं किया, प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि भक्त जाएं। क्यों? जो है शुभ अशुभ उसको स्वीकार करो, भगवान की भक्ति करो। सबसे शुभ भगवान की भक्ति, जिसने भगवान की भक्ति कर ली उसको शुभ अशुभ से क्या लेना देना। जैसे योगी होते हैं, योगी समय देखकर अपना देह छोड़ते हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है उत्तरायण में छोड़ना चाहिए, दक्षिणायन में नहीं होना चाहिए, इस तरफ देखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आत्मा यहां से निकलनी चाहिए। ये सब योगियों के लिए है, भक्तों के लिए कुछ नहीं है। भक्त किसी भी समय, चाहे उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, पूर्वायन होता नहीं है लेकिन फिर भी, पूर्वायन हो, पश्चिमायन हो, कुछ भी हो, भक्तों के लिए कुछ नहीं है। श्रीपद रामानुजाचार्य के गुरु श्रीरंगम पहुंचने से पहले रस्ते में है, कुरेश साथ में है, कुरेश कह रहे थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत बीमार हो गए, बस मरने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, बस अभी हम लोग धाम में प्रवेश करेंगे, धाम में पहुंचने के बाद आप देह छोड़िएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं इसी जंगल में बीच में जहां कोई धाम नहीं है, कोई शुभ स्थान नहीं है, मैं यहां पर देह छोड़ूंगा, ये दिखलाने के लिए कि कृष्ण के भक्त के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो धाम में ही शरीर छोड़े। क्यों? क्योंकि उनके लिए सब शुभ है। प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह, योगियों के लिए आवश्यक है सही समय, सही स्थान, सही वातावरण, भक्तों के लिए कुछ आवश्यक नहीं है। इसलिए कभी हमें ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए पूछने के लिए, महाराज मेरा घर ये बुरा समय कब समाप्त होगा। भक्ति करते हैं जिस दिन प्रारंभ किया हरे कृष्ण महामंत्र लेना, बुरा समय समाप्त हो गया, पूछने की क्या जरूरत है। हाँ ये है कि उसको गंभीरता से नहीं करेंगे तो बुरा समय चलता रहेगा, बुरा समय दूर करना है तो जप अच्छा कीजिए, बस इतना ही है। हमारा सब कुछ जप पर आधारित है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ये शुभ अशुभ इन चीजों में हमें नहीं फंसना चाहिए। इस जगत में कैसे कुछ चीज इतना, यहां पर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की, क्या शुभ हो सकता। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि एक प्लेन, मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन था, वो उड़ रहा था, अचानक उसको मिसाइल आकर लग गया, अचानक ब्लास्ट हो गया, सब लोग मारे गए, 250 लोग थे उसके अंदर, सब खत्म। जब उनका प्लेन उड़ा होगा तो उनको बड़ा शुभ लगा होगा ना, बड़ा शुभ समय देखकर कोई उड़ा होगा उसमें से कि हाँ सही समय पर प्लेन उड़ा है। उसके 90 सेकंड पहले उसी जगह से एयर इंडिया का एक प्लेन गया था, उसके 90 सेकंड बाद दूसरा एक प्लेन वहां से गया था लेकिन उसी समय उसको वहां पर लग गया। तो क्या है इस जगत में, क्या गारंटी है? हम लोग शुभ अशुभ सोचते रहे कि 4 महीने बाद आपका शुभ समय शुरू होगा। अरे 4 महीने बाद जिंदा रहोगे तब तो शुभ समय शुरू होगा, मरने के बाद नरक में शुभ समय शुरू होगा। तो इसीलिए ये चिंता हमें नहीं करनी। हमारा शुभ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे चीज शुभ चीज है। इस जगत को एक जेल कहा जाता है। तो इस जगत में रहकर शुभ और अशुभ का पालन करना किस तरह है कि व्यक्ति जेल में रहकर ये सोचे कि मुझे आज खाने के लिए एक रोटी एक्स्ट्रा मिल गई, बहुत अच्छा है, रोज 2 ही मिलती है, आज मैंने किसी तरह 3 ले ली, या मेरे सोने के लिए मुझे जमीन पर सोना पड़ता था, कहीं से मेरे को एक अच्छा बेड मिल गया है। तो जेल में ही ना, बेड मिले, रोटी मिले, एसी भी मिल जाए, समझिए आजकल नेता होते हैं तो देखिए जेल वालों को भी पता होता है कि नेता कभी कभी आएंगे जेल में, तो उनके लिए सब व्यवस्था करके रखी जाती है, बढ़िया रूम, एसी रूम, सोने वोने की व्यवस्था, कुछ भी हो। क्या जेल में रहने का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति जेल में रहकर सुविधाओं को बढ़ाए, या जेल में रहने का उद्देश्य ये है कि जितना जल्दी हो बाहर जाए? हम लोग इस जेल में हैं, इस भौतिक जगत में, उद्देश्य ये होना चाहिए कि कितना जल्दी बाहर जाएं। शुभ और अशुभ में फंसे रहेंगे तो ये बंधन का कारण है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्णेर बंधे कृष्णेर भक्तिर बाधक शुभ अशुभ। ये जो शुभ अशुभ चीजें हैं ये कृष्ण भक्ति की बाधक है। अगर आप शुभ और अशुभ में पड़े रहोगे तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं शुभ शुभ फले रहे वह मोक्ष से कर्म बंधन। ये जो शुभ और अशुभ को जब त्यागोगे तब ये बंधनों को तोड़ पाओगे। जब तक शुभ अशुभ में पड़े हो तो केवल बंधन है, आज ये शुभ है आज अशुभ है। भक्ति में सब कुछ शुभ है क्योंकि कृष्ण पूर्ण शुभ है। इसीलिए हमें चिंता ही नहीं करनी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जीव के जीवन में शुभ और अशुभ क्या है। वे कहते हैं कि जिस क्षण जीव को भगवान की कृपा प्राप्त होती है वो सबसे शुभ क्षण है जीव के लिए। और जब वही जीव इंद्रिय भोग के कारण, इंद्रिय आसक्ति के कारण भगवान की भक्ति नहीं करता वो सबसे अशुभ क्षण है उसके जीवन का। दूसरे शब्दों में अगर भक्तों के संग में रहकर भक्ति नहीं कर रहा ये सबसे अशुभ चीज है। और शुभ क्या है? भगवान की कृपा किसी भी तरह से आए, भक्तों के रूप में आए, भगवान की भक्ति के रूप में आए, विग्रह के रूप में आए, मंदिरों के रूप में आए, शास्त्रों के रूप में आए, नाम के रूप में आए, ये भगवान की कृपा है। इसीलिए शुभ जब मानना है तो उसको मानना चाहिए जहां भगवान की कृपा हमें, वो क्षण शुभ है। जिस क्षण हमने नाम ले लिया भगवान का वो क्षण शुभ है हमारे जीवन का। जिस क्षण कथा सुन ली हमने भगवान की वो क्षण शुभ है। जिस क्षण हमने सेवा कर दी भगवान की वो क्षण शुभ है, बाकी सब अशुभ है। इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इस जगत में रहते हुए भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि उनको वो व्यक्ति प्रिय है जो शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। भगवान भगवत गीता के अंतिम अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति शुभ शुभ परित्यागी इस शुभ अशुभ चीजों को छोड़ देता है भक्तिमान और फिर भक्ति में स्थित हो जाता है, केवल भक्ति को सब कुछ मानता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए भक्तों के रूप में कम से कम हम जो भक्ति का पालन कर रहे हैं हमें इन चीजों से परे रहना चाहिए। कोई ज्योतिषी, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, एक ही व्यक्ति कर सकता है आपका उद्धार, वो है कृष्ण और कृष्ण के भक्त। ये विश्वास होना चाहिए, इसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहेगी, सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। क्या दृढ़ निश्चय होना चाहिए? कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृतः, सारे काम ठीक होंगे, सारे काम शुभ होंगे अगर कृष्ण भक्ति हम करेंगे। ये संदेश प्रभुपाद इस अध्याय में दे रहे हैं। इसीलिए हम सबको जानना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति पर आधारित जीवन बहुत खतरनाक जीवन है, क्योंकि वो हमें कृष्ण से दूर ले जाता है और इन चीज़ों में फंसाकर बंधन में डालता है। लेकिन भक्ति पर आधारित, कृष्ण पर आधारित, हरिनाम पर आधारित, सेवा पर आधारित जीवन, ये सर्वोच्च जीवन है। इसकी कामना हमें करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इन सारे जगत के चीज़ों से दूर रहकर केवल कृष्ण भक्ति में आगे बढ़कर जीवन को सफल कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? योगी और भक्त का, योगी और भक्त का क्या अंतर है? आध्यात्मिक मार्ग में कई पथ हैं। कर्म का पथ है जिसे कर्म योग कहते हैं। योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो एक व्यक्ति कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ता है, दूसरा व्यक्ति अष्टांग के द्वारा भगवान से जुड़ता है, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, जिसे प्रमुखता पतंजलि ने दिया, योग सूत्र जिसे कहा गया। और कोई व्यक्ति ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं, जिसको ज्ञान योग कहते हैं, और कोई भक्ति के द्वारा। ये सारे योगी हैं, कर्म योगी, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। लेकिन इन सारे योगियों में से भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। इन सारे योगियों में भगवान कहते हैं जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, भक्ति में लगा है, वो श्रेष्ठ है। तो योगी और भक्त में अंतर ये है कि भक्त भी एक योगी है, लेकिन वो भक्ति के मार्ग का पालन कर रहा है, इसलिए अन्य योगियों से श्रेष्ठ है। वैसे साधारण भाषा में जब योगी कहा जाता है तो अष्टांग योगी को संबोधित किया जाता है। अष्टांग योगी मतलब जो आठ अंगों का पालन करते हुए योग की प्रक्रिया को पालन करता है, और उसका उद्देश्य भगवान की सेवा नहीं होता, क्योंकि वो भक्ति में नहीं आता। वैसे जब कोई योग का पालन करता है तो धीरे धीरे वो भक्त में बदल जाता है। भगवद्गीता के छठे अध्याय में जब भगवान वर्णन करते हैं योगियों का, ध्यान योगी का, फिर उसके बाद उनको कैसे वो भक्त में बदलता है उसका भी वर्णन करते हैं। तो जो योगी होता है, जो साधारण भाषा में जिसको योगी मतलब अष्टांग योगी, उसका उद्देश्य ये होता है कि वो किसी तरह इस जगत से छोड़ के जाके या तो ब्रह्म में विलीन हो जाए या परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं ऐसे योगी। ज्ञान योगी अलग हैं, कर्म योगी अलग हैं। तो योगियों की अलग अलग गतिविधि, अलग अलग गतियाँ होती हैं। और भक्त की गति जो होती है तो भक्त भी एक योगी है, क्योंकि वो भी योग का पालन कर रहा है। योग मतलब जुड़ना भगवान से, योग मतलब केवल आसन नहीं है, योग मतलब भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया। तो वो भी भक्ति योगी है, लेकिन वो सारे योगियों में से भगवान के मतानुसार श्रेष्ठ योगी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बाकी लोग कर रहे हैं उसके परम उद्देश्य तक पहुंच गया है। जैसे जो कर्म योगी है उसका उद्देश्य भी भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन वो धीरे धीरे आता है। और जो ज्ञान योगी है उसका भी उद्देश्य, वो भी धीरे आता है। फिर जो अष्टांग योगी है उसका भी उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन धीरे आता है। लेकिन जो भक्ति योगी है वो सीधा एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करता है, भगवान को प्राप्त करने के। तो इसीलिए उसको श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, यस। बहुत अच्छा प्रियव्रत महाराज, प्रश्न ये है कि अलग अलग जो वर्णन किए द्वीपों में हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, या हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है, बुद्धि है, वो हमसे अधिक है। थोड़ा सा अंतर है माना भी, लेकिन अंतर इसी इन्हीं श्लोकों में वर्णन किया गया है कि उनकी बहुत लंबी आयु होती। जैसे प्रियव्रत महाराज के पुत्र अभी तक रह रहे हैं वहाँ पर, तो उनकी आयु बहुत लंबी होती है, बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, और स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग ऐसी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, और प्रमुखता वे लोग पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे होते हैं। तो उनमें हमें ये अंतर है, हमारी बुद्धि बहुत कम है, इसीलिए हम लोग देवी देवताओं की पूजा या भौतिक भोगों में पड़ते हैं, वो लोग नहीं पड़ते। फिर हमारी उम्र बहुत कम है, 100 साल भी शायद मुश्किल से कोई जीता है। हम लोग तो सोचते हैं बहुत लंबा जीवन है, आराम से भक्ति करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा जीवन। उनकी उम्र बहुत लंबी होती है और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। वहाँ कोई हॉस्पिटल्स नहीं हैं उन द्वीपों में, ये केवल हमारे लिए ही खुले हुए हैं हॉस्पिटल यहाँ पर। तो इस तरह से वे लोग रहते हैं, तो वो भी मानव ही हैं वे, और उनमें से कुछ देवताओं की श्रेणियों में आते हैं। जैसे हमने बताया था कि 3 प्रकार के स्वर्ग होते हैं, एक दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग और बिल स्वर्ग। तो ये जो द्वीप हैं इनमें से कुछ द्वीप भौम स्वर्ग में भी आते हैं, तो वे लोग भी थोड़े वे उस जैसे यहाँ पर बताया गया कि उनके लिए संतानें इत्यादि भी होती हैं, देव दिव्य लोकों में वो नहीं होता है, दिव्य स्वर्ग में। तो ऐसे अलग अलग हैं, मगर बेसिक मूल रूप से वो मानव ही हैं हमारे आपकी तरह, लेकिन कुछ थोड़ी सी ऊंची सुविधाएं उनको प्राप्त है। ठीक है, हाँ बोलिए।
जैसे हम लोग खारे पानी वाले साधन के लिए क्या करते हैं, या इस भूमंडल में खारे पानी का है, लेकिन हमें धरती में मीठा पानी प्राप्त होता है, ये जैसे भगवान की रचना ऐसा है।
यस, ये जो खारा पानी है और हमें मीठा पानी प्राप्त होता है, ये भगवान की योजना है। क्योंकि भगवान ने, जैसे हमने शुरुआत में बताया, हर जीव के लिए व्यवस्था की है। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, भगवान ने पहले से बना के रखा है कि ऑक्सीजन अपने आप बनती रहती है उसी में, ताकि हम लोग उसको उपयोग करें। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, भगवान ने व्यवस्था की हुई है। हमें खाने के लिए अन्न चाहिए, भगवान धरती से प्रकट करा देते हैं, कोई बना नहीं सकता इन चीज़ों को। तो ये जो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण, जैसे इंग्लिश में एक शब्द आता है लाइफ सेविंग ड्रग्स या लाइफ सेविंग थिंग है, जीवन बचाने की, तो जीवन बचाने की ये चीज़ें हैं, हवा, पानी और अन्न। और ये भगवान ने हर जगह प्रदान किया है, हर एक के लिए अलग व्यवस्था। पशुओं के लिए व्यवस्था की है, उनको अन्न उगाने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए घास इत्यादि दी, वो खाकर उसी में जीवित रहते हैं। तो ये व्यवस्था भगवान की है, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का जो बुद्धि है कि उन्होंने बनाने जब बनाया उसी समय सब कुछ सोच कर बना दिया कि ये सब इनको लगेगा, पहले से व्यवस्था करवा दी। तो ये भगवान की कृपा है। ठीक है, यस। Yes.
Right. और मैं मतलब ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की बात
यस बहुत अच्छा। तो पहली चीज़ जो भक्ति में नहीं है और उसके वो अगर जाते हैं तो वो अलग ही बात है, क्योंकि अगर भक्ति में नहीं है वो और एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो फिर उसने तो अभी भक्ति का मार्ग स्वीकारा नहीं। तो हमने तुलना की थी भक्तों को और जो भक्ति में नहीं है, जो भक्ति में नहीं है वो लोग अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं क्योंकि कहाँ जाएंगे नहीं, तो वो कहीं तो जाना है तो वो जाए। लेकिन भक्ति में जो आ गया, भले वो शुद्ध भक्त नहीं है, जैसे आपने प्रश्न किया कि शुद्ध भक्त है तो ठीक है उसका सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना चाहिए। कारण पहला, जैसे आपने खुद कहा, इस समय में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं प्रमाणिक नहीं है, अधिकतर कहना चाहिए, हार्डली कोई एक आध कहीं आपको मिल जाए तो बात अलग है, तो प्रमाणिक नहीं है। पहली चीज़ जाकर केवल समय की बर्बादी होगी। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि वो प्रमाणिक है भी, वो जानता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ना, जब हम भक्ति करने लगते हैं तो भक्तों की जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स होते हैं उसको पढ़ने का तरीका अलग है और जो भक्ति नहीं कर रहे उनको पढ़ने का तरीका अलग है। सेम पोजिशन, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ा जाता है कि इस समय गुरु की स्थिति यहाँ है, शुक्र यहाँ पर है, इसके अनुसार आपको ये प्रभाव हो रहा है। वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो कोई भगवान तो नहीं है कि आपको देखते ही बता देगा कि यही आपकी प्रॉब्लम है, वो तो कुछ चार्ट पढ़ के कुछ देखकर बताएगा। तो एक भक्त के लिए जो वो चार्ट वैसा ही होगा जो एक गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति एक साधारण व्यक्ति पर प्रभाव करती है, वो भक्त पर नहीं करती, भक्त पर उसका दूसरा प्रभाव होता है। तो अब आगे एक साधारण व्यक्ति जब पढ़ेगा तो वो गुरु शुक्र की स्थिति के अनुसार आपको यही बताएगा कि ये आपका, लेकिन वो भक्त के लिए नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक इंडिया के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं मिस्टर राव, जिन्होंने बहुत से प्रेडिक्शन किए जो सही हुए, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा है। मतलब ये हमारा मानना नहीं है, उनका मानना है। तो एस्ट्रोलॉजर हो के जब वो लिखते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए। तो उनका मानना है कि ग्रहों की स्थिति भक्तों के लिए जो साधारण व्यक्ति के लिए होती है प्रभाव, वो भक्त के लिए नहीं होगा। स्थिति वही होगी, प्रभाव अलग होगा, इसीलिए जाकर लाभ नहीं है क्योंकि जो आपको बताएंगे वो सही नहीं होगा। तीसरी चीज़ की, मान लीजिए कि अगर सब कुछ सही भी है और व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, भक्त में भी शुद्ध भक्त नहीं है, इसका अर्थ ये है कि वो भगवान पर से विश्वास को कम कर रहा है। उसको ये विश्वास नहीं है कि भगवान की भक्ति मुझे सब कुछ दे सकती है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि मेरे साथ जो भी होगा मेरे कर्मों का फल है और भगवान की इच्छा। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हमें भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान के नाम, भगवान के भक्तों पर विश्वास होना चाहिए एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा। तो इसका अर्थ है कि जब हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, मैं प्रयास करता हूं जाके उससे कुछ मार्ग निकल जाए, मतलब हम भगवान के नाम पर अविश्वास दिखला रहे हैं। हमें ये विश्वास नहीं कि भगवान के नाम का जप करने से सब कुछ ठीक होगा। तो ये विश्वास हमारा कमज़ोर हो जाता है। और मान लीजिए ऐसा भक्त चला जाता है और वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है हाँ तुम्हारा ये है, तुम इतना ये करो सब ठीक हो जाएगा, तो वो कर देता है, तो उसका विश्वास नाम से ज़्यादा उस पर हो गया और फिर आगे भी उसका कभी विश्वास पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा सोचेगा कि नाम लेना तो ठीक है लेकिन कष्ट आए तो मुझे जाकर ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ कराना है। तो ये थोड़े से हमारे भक्ति में आने के बाद विश्वास एस्ट्रोलॉजी पर दिखलाने के नुकसान हैं। और मूल चीज़ जैसे आपने खुद ही कही कि आजकल है नहीं ऑथेंटिक, तो अब कहाँ ढूंढोगे? और क्या होता है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं आप उनके पास जाओ, वो आपको जो चीज़ें पहले बताते हैं वो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन हमें लगता है हाँ सही कहा, एस्ट्रोलॉजर को मालूम है मेरे पास आया तो जीवन में कष्ट होगा तभी आया, सुखी व्यक्ति तो आएगा नहीं। तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को बता देते हैं आपको लगता है एकदम ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर है ये। वो बोलेंगे कि ऐसा तकलीफ है, धन की तकलीफ, अरे एकदम इसको कैसे पता चला, उसको क्या पता चला, सबको पता है तभी तो आए हो मेरे पास, तकलीफ है। तो ये मतलब एक तो बोगस बहुत सारे हैं जो केवल बिजनेस के रूप में करते हैं शास्त्र को। वैसे ये शास्त्र है, भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर ने इसको खुद पढ़ा था, वो पंचांग बनाया करते थे, लेकिन जब उन्होंने भक्ति प्रारंभ की उन्होंने त्याग किया। प्रारंभ की मतलब उन्होंने जानबूझ के त्यागा ये दिखाने के लिए कि भक्ति में आ, जबकि वो इतने प्रकांड पंडित थे। आप सोचिए कि हम लोग तो केवल पंचांग देखकर किसी चीज़ को बता सकते, उन्होंने पंचांग बनाया था। भारत में शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण सा शास्त्र सूर्य सिद्धांत कहते हैं, उसके वो प्रकांड पंडित थे सूर्य सिद्धांत के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन उन्होंने उसको ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि भक्ति को उन्होंने महत्व दिया, ये दिखलाने के लिए कि जब हम भक्ति में आ जाएं तब इन चीज़ों को हमें ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तो प्रमुखता, पहली चीज़, सही प्रमाणिक लोग नहीं हैं जो अच्छी तरह से शास्त्र के आधार पर हमें बता सकें। दूसरी चीज़, भगवान पर से विश्वास हमारा कम हो जाता है। और तीसरी चीज़, अगर सब कुछ सही भी है तो हमारा प्रभाव अलग होता है। इसीलिए जो अच्छे प्रमाणिक एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं कि भक्तों को एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए। ये उन्होंने खुद अपने आर्टिकल में लिखा है कि डिवोटीज को नहीं जाना चाहिए एस्ट्रोलॉजर के पास। तो इसीलिए इन कारणों से, और हमारा मूल कारण है कि हमें भगवान के नाम, भगवान के भक्तों, भगवान की सेवा पर विश्वास है। जो भी जीवन में कष्ट आए उसको सहन करेंगे भगवान की कृपा मानकर, तब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। भौतिक लाभ मांगने के लिए जाओ, तब भी हमें भगवान के पास ही रहना चाहिए कि ये जानकर कि भगवान मुझे भौतिक चीज भी दे सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में कहा गया, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकामो, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई कामना नहीं, सर्व कामो, ऐसा व्यक्ति जो कामनाओं से भरा हुआ है, मुझे धन भी चाहिए, मुझे पावर भी चाहिए, मुझे मंत्री भी बनना है, मुझे ये भी बनना है, सर्व कामो। मोक्ष कामो, मोक्ष कामो मतलब जिसने बोला बस मुझे मोक्ष की कामना और कुछ नहीं, तीनों को वो कहते हैं अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे। उसको तीव्रता से भक्ति योग करना चाहिए क्योंकि ये विश्वास करके कि जो चीज़ मुझे कृष्ण दे सकते हैं वो मुझे अन्य देवी देवता या मेरे ग्रह नहीं दे सकते। तो भले आपको भौतिक चीज़ चाहिए, आप अभी शुद्ध भक्ति नहीं मांग रहे हो, धाम नहीं मांग रहे हो, तो भी कृष्ण के पास जाओ, शास्त्र ये कहता है, अकामो सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार, तो भी कृष्ण के पास जाओ। ये जानकर कि देवी देवता, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, हमने 1 करोड़ रुपए में से किसी व्यक्ति को दे दिया 2 लाख रुपया और कहा कि आप उससे जाकर ले लो, आप कितना ले पाओगे उससे? 2 लाख से 1 रुपया ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसको है ही 2 लाख। लेकिन आप हमारे पास आओगे तो हम 5 भी दे सकते हैं 10 भी दे सकते हैं 1 करोड़ भी दे सकते हैं आपको, क्यों? हमारे पास है। तो भगवान वो हैं कि जिन्होंने देवताओं को 2 लाख रुपया दे रखा है, देवता उतना ही दे सकेंगे आपको, उनकी क्षमता उतनी है। लेकिन अगर भगवान के पास आएंगे वही चीज़ मांगने, आप पैसा मांगने ही या भौतिक लाभ मांगने, भगवान कितना दे सकते। ध्रुव महाराज उनके पास गए एक राज्य मांगने, मेरे पिता से बड़ा राज्य चाहिए, भगवान ने पूरा ध्रुव लोक, पूरा अपना लोक दे दिया उनको। तो जिन भी भक्तों ने भौतिक कामना से भी किया है, ऐसे कई भक्त हैं जो भौतिक कामना लेकर गए थे, कई हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, लोग जाते हैं कि मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कर्दम मुनि का हम लोगों ने देखा, शादी करना चाहते हैं। फिर कई जाते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, भगवान की भक्ति करें कि हमें आप जैसी संतान चाहिए, वो भी भगवान की भक्ति, भौतिक कामनाएं लेकर जा रहे हैं। तो इन कामनाओं के लिए भी अगर कोई तपस्या करता है भगवान की, तो शास्त्र कहते हैं कि वो भी करना है ना तो भगवान के पास आओ और कहीं नहीं जाओ, क्योंकि जो वो दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। तो बुद्धिमानी इसी में, ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न था। ये मन में आते हैं प्रश्न, लोग पूछते नहीं हैं, पूछने चाहिए। और कोई प्रश्न? खैर समय बहुत हो गया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद देवी।